أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يبدو أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ صرف تمہارے لیے خاص ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن ان کے اعمال بد کی وجہ سے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، تم ان کو سب سے زیادہ زندگی کے حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ کاش وہ ہزار برس دیے، مگر لمبی عمر کسی طرح اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتی، وہ جو کام کر رہے ہیں خدا تو ان کو دیکھ رہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر جو ہے 92, 94, 95 اور 96 ہے، جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس کا مقصد جو بیان کرنے کا ہے وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے آگے کتاب میں جو ہے پڑھا جائے گا. کیونکہ یہودی جو ہے کہتے تھے کہ جو ہے ہم جو ہے جنت کے حقدار ہیں، آخرت کے حقدار ہیں، اللہ کی جو ہے دوست ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کے دوست ہو اور آخرت تمہارا ٹھکانہ ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، اور پھر کہہ رہا ہے کہ ان کی تو یہ صفت ہے کہ جو ہے زندگی کے حریص ہیں، بہت زیادہ حرص لالچی، بہت زیادہ جینا چاہتے ہیں، یہ مرنا نہیں چاہتے، والے کہ ہر ایک جو ہے ہزار ہزار برس جو ہے جینا چاہتا ہے، تو یہ جو خواہش ہے جینے کی اور موت سے بھاگنے کی یہ مرنا نہیں چاہتے، اور جو ہے جینے کی جو خواہش ہے یہودیوں کی صفت ہے، یہ کفر ہے. تو حضرت موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ زیستن بجا کفر، جان سے جینا کفر ہے، میں جو جینا چاہتا ہوں یہ کفر ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، اپنے وجود کو کھونا نہیں چاہتا. تو جو سچا طالب ہوتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے اگر میں سچا اللہ کا طالب ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، جنت ہمارے واسطے ہے، تو جو ہے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سچے اللہ کے طالب ہو تو موت کی تمنا کرو. مطلب جو سچا طالب ہوتا ہے وہ موت کی تمنا میں ہوتا ہے. آگے آپ کو ایک اور ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ انہیں یہودیوں سے مخاطب کر رہا ہے، اس میں دیکھیں بات کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. آپ کہہ دیجئے کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو نہ کہ اور، تو ذرا موت کی تمنا تو کرو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور وہ لوگ ان اعمال کے سبب جو وہ کر چکے ہیں ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. تو صاف جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ موت کیا متمنی ہوتا ہے، اگرچہ کہ جو ہے عوام کو کہا گیا کہ موت کی جو ہے دعا وغیرہ نہیں کرنا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے جو سچا طالب مولا ہوتا ہے، وہ مومن حقیقی جو ہوتا ہے، وہ آرزو میں رہتا ہے کہ کب جو ہے میں اس پل کو کراس کروں موت کو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے حضور پہنچوں. یہ COVID-19 کے سلسلے نے جو ہمیں بتا دیا کہ ہم کتنا جو ہے زندگی سے جو ہے خواہش مند ہیں، جو جینا چاہتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں. یہ زندگی کی جو حرص ہے وہ حقیقت میں جو ہے ان یہودیوں کی جو ہے صفت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اور جو سچا اللہ کا طالب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ مرنا چاہتا ہے. یہی بات کو ہم نے جو ہے پچھلی نشست میں سنا ہے، پچھلی جو انیس الغربا کی جو نشست تھی اس میں یہی بتایا گیا کہ رسول صاحب نے صاف فرما دیا موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے، صاف کہہ دیا گیا. اب دوست جو ہے پل کو پار کرنا چاہے گا، نہ کہ جو ہے وہ پل سے جو ہے کراہت کرے گا. वो पुल को पार करना चाहेगा। उसी बात के ऊपर जो है पिछली नशिस्त में जो है इसी के ऊपर जो है हजरत ने जो है गुफ्तगू की थी आपके सामने, जो है अहादीस पढ़ी गई। ये भी अल्लाह ये हदीस मुबारक जहाँ पे जो है रसूल ने फरमाया कि मन अहब्बा लिखा अल्लाह अहब्बा अल्लाह लिखा, यानी जो अल्लाह अज़्ज़ल की मुलाकात का ख्वाहिशमंद है अल्लाह अज़्ज़ल उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है, यानी जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। तो हज़रत इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि लिखा अल्लाह, यानी अल्लाह की मुलाकात से आप मुराद ले रहे हैं कि इस हदीस में लिखा अल्लाह से मुराद मौत है, यानी जो मौत को पसंद करता है अल्लाह उसको पसंद करता है। हकीकत में अल्लाह का तालिब जो है ये मौत के पुल को क्रॉस करना चाहता है, कोई मामूली बात नहीं देखी जी। वही बात अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में कह रहा है कि यहूदी अपने आप को कहते हैं अल्लाह के वो तालिब है, जन्नत जो है उनके वास्ते है ना कि दूसरों के वास्ते, आखिरत का जो घर है उसे उनके वास्ते है। तो उसी बात को अल्लाह ने कह दिया, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, बल्कि ये तो जो है जीना चाहते हैं, इनके पास जो है ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, ये हज़ार हज़ार बरस जीना चाहते हैं। तो जो जो जीने की जो ख्वाहिश है ये हकीकत में जो है कुफ्र की सिफत है। तो जो तालिब मौला होता है वो तो जो है इस दुनिया से जल्द जो है वो जाना चाहता है। इसी की तफसील आपने जो है इससे पहले की निश्चित सुनी है, हम सुन रहे हैं अनीसुल गुरबा हज़रत शेख नूरुल हक नूर खुद आलम रहमतुल्लाह की किताब, जिसको हमारे आका हमारे मौला हमारे इमाम हमारे सब कुछ इमामाना महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने आपकी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया कि अगर हमारे लोग कुछ पढ़ना चाहे तो मुक्तदियों को चाहिए कि अनीसुल गुरबा और मरहूबुल कुलूब पढ़ें। दो किताबों का नाम जो है महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने, बिगनर्स अगर जो है कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो ये दो किताबें पढ़ें, जहाँ पे जो है अनीसुल गुरबा में गरीब से मुराद यही है, गरीब बेवतन शख्स परदेसी को कहते हैं जो उस देश से अपने वतन से या अल्लाह ताला का लामकानी है बादशाह के दरबार से जो है चंद दिनों के वास्ते जो है दूर फेंक दिया गया, तो वो यहाँ पे बेचैन और बेकरार है क्योंकि वो परदेश में है। ये ऐसा ज़्यादा ना है कि जो मैं यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ इस ज़मीन पर इस वजूद के साथ मैं परदेश में हूँ, हकीकी देश बादशाह का दरबार, जो आपको इससे पहले भी जो है मिसालों से जो है समझा दिया गया है। ज़्यादा अपनी मंतिक में ना जाते हुए आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं, पिछली नशिस्त से थोड़ा सा पीछे लेते हुए थोड़ा सा ब्रीफली, पिछली नशिस्त में जो है एक हदीस छुड़ गई थी वो हदीस पढ़ते हुए थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ जो है पिछली नशिस्त के पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें जो है रसूल का इरशाद मुबारक है। रसूल ने फरमाया कि जो है तुम सफ़र करो क्योंकि जब पानी रुक जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। हज़रत इसकी तशरीह करते हैं कि जिस तरह मुसाफिर राह सफ़र को अपनी रिहाइश व क़यामगाह नहीं बनाता है, सफ़र से रोकने वाले बोझ और सामान सफ़र की वजह से सफ़र से बास नहीं रहता है बल्कि अपने आप को सामान से खाली और हल्का कर लेता है, तू भी एक मुसाफिर है, दुनिया को अपनी रिहाइश व क़यामगाह मत बना। यानी एक मुसाफिर है जो है कहीं पे जाके जो है दूसरे वतन में जो है नौकरी चाकरी कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा सामान वगैरह जो है वहाँ पे जमा नहीं कर लेता क्योंकि वो जानता है ये तो जो है मेरा मुल्क ही नहीं है, ये जो है मैं यहाँ पे जो है इस पर जो है टेम्प्ररी जगह है, तो वो जो है हल्का फुल्का रहता है। तो आप फरमा रहे हैं कि तू भी एक मुसाफिर है, दुनिया को अपनी रिहाइश व क़यामगाह मत बना। दुनिया पुले अस बरगुजर अज राह आखिरत, अहले तमीज़ खाना ना करदन बर पुले, दुनिया राह आखिरत से गुजरने का एक पुल है, अकलमंद पुल पर घर नहीं बनाता, बर पुल खाना मसास के ई खाना बेतमीज़, रोज़े भूत की सील बर्द खाना बा पुले, ए बेवकूफ़ पुल पर घर मत बना कि एक दिन ऐसा होगा कि सैलाब पुल के साथ घर को भी बहा ले जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिवायत भी याद रखिए जिससे पहले की नशिस्त में आपको बताया गया था। आगे हज़रत लिख रहे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ जल के अलावा हर बोझ व बार से अलग थलग और खाली हो जा और खिलवत व तन्हाई इख्तियार कर, जो रहना है वो सिर्फ जो है अल्लाह की ज़ात आपके साथ रहना है, उसके अलावा जो दूसरा है उसे जो है खाली हो जाओ। यहाँ तक जो है हमने इससे पहले की जो है नशिस्त में पढ़ा था। आगे कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लम ने फरमाया कि राह सफ़र में तेज़ चलो क्योंकि वो लोग सबकत ले गए आगे बढ़ गए जो गैरुल्लाह से अल्लाह के अलावा से किनारा कश और अलग थलग हो गए। तेज़ चल इंतज़ार का कौन सा मौका है, मुसाफिर अपने अहले खाना यानी अपने घर वालों को और वतन के इश्तियाक में सफ़र की सख्ती और हिजर की तकलीफ़ इख्तियार करता है ताकि अपने अहलो वयाल और वतन वालों से जल्द अज जल्द मुलाकात करें और राह सफ़र की मुसीबतों से महफूज व मामून हो जाए।
तू भी।
अब देखिए एक आम मुसाफिर है तो जो है वो जहाँ पे दूसरी जगह पे रुका हुआ है जो कुछ के वहाँ पे मशक्क़तें वगैरह होती है उसको जो है बर्दाश्त करता है ताकि जो है जल्द से जल्द वहीं यहाँ पे काम कर लूँगा और जो है अपने घर वालों से जाके मुलाकात करूँगा। तो हज़रत जो है अब यहाँ पे बार बार जो है कंपेयर कर रहे हैं, एक आम मुसाफिर जिस तरह से रहता है तू भी जो है अल्लाह के वास्ते जो है इसी तरह रहे। तो आगे हज़रत लिख रहे हैं कि तू भी मुजाहिदा मुजाहिदा कर, यानी जो है मशक्क़त मेहनत मशक्क़त कर और नफ्से अम्मारा की मुखालिफत की मशक्क़त बर्दाश्त कर। जैसा कि हदीस शरीफ में इशारा किया गया है कि उक्तिलू अनफुसकुम बिसयूफी मुजाहिदाती वल मुखालिफाती, यानी अपने अनफास को अपने नफ्स को कत्ल करो मुजाहिदे और मुखालिफत की तलवार से। तो यहाँ पे आपको जो मेहनत मशक्क़त करना है इस मुसाफिर को वो जो है जो मुजाहिदा और मुजाहिदा उसे करना है वो जो है नफ्स को उसके काटना है मुजाहिदे की और मुखालिफती तलवार से, यानी जो कुछ कि नफ्स ख्वाहिश कर रहा है उसको जो है काटते चले जाओ ताकि जो है आपके वास्ते आसानी होती जाए। आगे तो लिख रहे हैं कि नफ्स अम्मारा को मुजाहिदे की तलवारों से कत्ल कर डालो, रात व दिन सफ़र करने से राह फरार इख्तियार मत कर, राह सफ़र में चैन व खरार मत ले और आजिज़गी व वारिस्तगी के साथ ये शेर गुनगुना, यारब तू मदा करार मारा अगर बेरुख तो करार दारे। ये शेर को जो है कई औलिया इकराम ने हमारे पास के कई बुजुर्गों ने जो है लिखा है कि अल्लाह तू हमें ऐसा चैन व करार मत दे कि तेरे रुख यानी तेरे दीदार के बगैर हम करार पाए, यानी जो है आप सफ़र में जो है आपको खरार इत्मीनान नहीं लेना है, अल्लाह के अलावा इत्मीनान नहीं लेना है। खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर जो है इत्मीनान नहीं आना है, किसी लज्जतदार चीज़ में आप मशगूल हैं तो जो है अल्लाह के अलावा कहीं पे जो है लज्जत ना आना है, खरार ना पकड़ना। कितनी बड़ी दुआएं कीजिए कि यारब तू मदा खरार मारा, यानी या अल्लाह तू मुझे खरार मत दे अगर बगैर तेरे में कहीं और पे खरार पड़े, यारब तू मदा खरार मारा अगर बेरुख तू खरार दार। मुसाफिर हमेशा राह सफ़र में, अब देखिए दोनों कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ का मुसाफिर और जो है हकीकी जो हम मुसाफिर हैं अल्लाह से जो जुदा हो के आए। मुसाफिर हमेशा राह सफ़र में डाकुओं चोरों और रहजनों से होशियार और बाखबर रहता है, अपने साजो सामान की खुद पासबानी करता है यानी इबादत करता है, रात व दिन डरा व सहमा रहता है, एक घड़ी भी गाफिल व बेपरवाह नहीं होता है। तू भी होशियार और जागते रहा कर, अपने दिल की हिफाजत व पासबानी करता रहे और इबादत में पास अनफास की कोशिश कर, यानी सांसों की हिफाजत जो पास जिक्र है पास अनफास की सांसों की हिफाजत की कोशिश कर ताकि शैतान राह ना पा सके, मताए ईमान यानी ईमान की पूंजी और मारिफत हक की दौलत तुझसे छीन ना पाए और पास आन पास वाली इबादत में खलल ना डाल सके। इस तरह मुसाफिर हमेशा अलर्ट रहता है कि कहीं डाकू ना आ जाए और उसका सामान ना लूट ले। आप जो है अलर्ट रहें, अपनी सांसों की जो है हिफाजत करते जाएं ताकि जो है एक भी सांस जो है अल्लाह से गाफिल ना जाए। रसूल भी फरमाते हैं जब तक जो है बंदे खुदा अल्लाह ताला का जिक्र करता है, जो बंदा अल्लाह का जिक्र नहीं करता जो है शैतान का सीना जो है शैतान अपना सीना उस आदमी के जो है सीने से लगा देता है और अपनी आर्जुओं को जो है उस आदमी की जो है आर्जू में डालता है, और जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान जो है फौरन जो है अपना सीना जो है वहाँ से दूर कर लेता है। तो जब तक आप जिक्र जारी रखेंगे आप से जो है आप शैतान से जो है बचे हुए। आगे लिखना है हज़रत के मुसाफिर रहजनों और रास्ते की मुसीबतों के खौफ से रात को सफ़र करता है और रात के आखिरी हिस्से में आराम करता है ताकि आफात राह से नजात पाए, यानी रास्ते है ना जो रास्ते में आफात आने वाले मुसीबतें उसे जो है नजात पाए और मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तू भी शब्बेदारी कर और आखिरी शब में आराम कर ताकि राह आखिरत के खौफ से महफूज हो जाए और मकसद तक पहुंच जाए। यानी जो अल्लाह वाले होते हैं वो रातों को जो है जागा करते हैं, सोते नहीं। कई औलिया इकराम के जो है आप वाक़ियात सुने हैं जो है 20-20 साल 30-30 साल जिन्होंने जो है ईशा की नमाज के वजू से फजर की नमाज जो है अदा की है, सोए नहीं है, सोते ही नहीं थे ये लोग अल्लाह वाले, क्योंकि मुसाफिर हैं, ये जानते हैं कि जो है ये मुसाफिर हैं, इनको जो है यहाँ से जो है अपना सामान जो है जल्द से जल्द जो है तैयार करना है और चले जाना है। उसम की हदीस भी देखीजिए, उसम ने फरमाया कि जो डरता है वो शब्बेदारी करता है रात को जागता है और जो शब्बेदारी करता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। कितनी बड़ी बात है, रसूल फरमा रहे हैं कि जो डरता है वो शब्बेदारी करता है, वो जागता रहता है, वो आराम की नहीं सोता हूँ, और फिर रसूल ये फरमा रहे हैं और जो शब्बेदारी करता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हमको और आप सबको क़ियामुल्लैल की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। आगे हदीस शरीफ है कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाद नफ्स का मिन असहाबिल कुबूर, यानी अपने आप को अहले कब्र में शुमार करो, यानी मुर्दा समझो अपने आप को, रसूल फरमाने के अपने आप को जो है अहल कबूर समझो, अपने आप को रसूल फरमाने के अपने आप को जो है अहल कबूर में शुमार करो। इसी की तफसील हजरत खुद बयान कर रहे हैं। इसी माने की एक दूसरी हदीस, खौल अलैहिस्सलाम मूतू खबल अंत मूतू, यानी मरने से पहले मर जाओ, ये मशहूर हदीस आपने सुनी है। अब इसको समझने के देखिए हजरत खुद समझा रहे हैं, इसके हदीस की तफसील है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में मुसाफिर और राहगुजर की तरह रहा करो, बेवतन की तरह रहो और जो एक रास्ता चलने वाली की तरह रहो, और अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मुर्दे को दुनिया की कोई ख्वाहिश व लालच और हिरस व तमा नहीं होती और किसी से कोई हसद व कीना नहीं होता, उसी तरह तुम भी अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। अपने दिल को दुनिया की ख्वाहिश व लालच, हिरस व तमा और हसद व कीना से पाक रखो। जिस तरह मुर्दे को जो है कोई ख्वाहिश नहीं होती, उसी तरह जो है अपने आप को तुम भी जो है इस तरह तमाम चीज़ों से जो है हसद से, तमा से, ख्वाहिशात से, लालच से जो है पाक रखो। हज़रत ख्वाजा निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर के साथ वाबस्ता कर लो अपने आप को कि बेतमम अज हमा सा जिंदे जस्तू न दारेम नौ जिंदे नवा जिंदे, यानी किसी भी बनाने वाले से कोई ख्वाहिश नहीं रखता, तेरे सिवा कोई दूसरा नवाजने वाला नहीं रखता। मुर्दे को किसी मखलूक की कोई ज़रूरत व हाजत नहीं होती, तुम भी अपने आप को मुर्दा शुमार करो और किसी मखलूक की तरफ तवज्जो ना करो। मुर्दे को जो है किसी की ज़रूरत ही नहीं होती, गलत कह रहे हैं कि तुम भी अपने आप को इसी तरह कर लो। मुर्दे को दुनिया में कोई तसरुफ व इख्तियार नहीं होता, यानी वो कुछ भी नहीं कर सकता और ना दुनिया से उसका कोई काम रहता है, तुम भी लोगों के दरमियान से अपना इख्तियार उठा लो और सारे काम अपने खालिक यानी खुदा के सुपर्द कर दो, तो सारे काम उसी के भरोसे छोड़ दे और खुश रहे। मौत की सख्तियों और तकलीफ़ों का मज़ा चख लेने के बाद मुर्दे के सामने से गैब की बातों का पर्दा उड़ जाता है। मुर्दा जो तकलीफ़ में रहता है एक साथ कंटिन्यूसली, वक्त आखिर जब आता है तो आखिर वक्त में जब पूरी तकलीफ़ से पार हो जाता है, वो जब इंतकाल से पहले जो है गैब के जो है पर्दे खुल जाते हैं। आप अक्सर सुने होंगे अपने लोग भी जब इंतकाल कर जाते हैं तो गैब की जो है बातें करना शुरू करते हैं, पर्दा जो हट जाता है। तो हजरत कह रहे हैं क्योंकि मुर्दा बनना है ना मैं, तू भी मुजाहिदात की सख्तियों और रियाजत यानी जो आपको मशक्क़त करना है अल्लाह के नाम की तकलीफ़ों का मज़ा चख ले, ताकि तेरे सामने से गैब की बातों का पर्दा उठ जाए और मुर्दे के हवास, हवासे ज़ाहिरी जो फाइव सेंसेस हैं आपके, जब बेकार हो जाते हैं तो आलम गैब की बातें उस पर ज़ाहिर हो जाती है। तू भी रियाजत के ज़रिए यानी मेहनत के ज़रिए हवास ज़ाहिरी को बेकार कर ले, ताकि गैब के असरार और रमूज तुझ पर खुल जाए, जो राज की बातें हैं वो खुल जाएँ। बड़ा मशहूर शेर है कि लब बंद व चश्म बंद व गोश बंद गर नबीनी सरहा बरमा वकन, यानी होठ आँख और कान बंद कर ले अगर तू असरार व रमूज ना देख पाए तो हम पर हंस। इसकी तशरीह हज़रत खुमिया साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह किताब में लिखते हैं कि अपने ज़ुबान को, अपने लबों को अल्लाह का नाम लेने के अलावा से बंद कर ले, गैरुल्लाह का नाम लेने से बंद कर ले, और अपनी आँखों को गैरुल्लाह के देखने से बंद कर ले, और अपने कान को अल्लाह के अलावा कुछ और सुनने से बंद कर लिया, अगर इसके बाद वो असरार ना खुले तो मुझ पर हंस। इतना बड़ा चैलेंज है कि अल्लाह के अलावा जो कुछ के है तुम उसे जो है सब बंद कर लो अपने आप को, उसके बाद अगर वो राज ना खुले तो मुझ पर जो है हंस। तो ये देखिए हदीस में जो है हदीस के असल जो तशरीह की है, मूतू खबल अंतम मूतू, मरने से पहले मर जाओ, यानी जब ये होगा तब जो है अल्लाह का दीदार होगा। मेरी मौत अलैहि सलाम से भी जो है एक मुल्ला ने सवाल किया था, आप जो है ज़िंदगी में जो है अल्लाह के दीदार की बात करते हैं, हालांकि दीदार तो मरने के बाद होगा। तो मेरी मौत अलैहि सलाम ने उस वक्त पे जो है ये हदीस मुबारक पढ़ी, आपने फरमाया बंदे ने कब कहा है कि जीते जी खुदा का दीदार होगा, तुमने हदीस शरीफ नहीं पढ़ी कि मूतू खबल अंतम मूतू, यानी मरने से पहले मर जाओ तब जो है अल्लाह का दीदार हासिल होगा। रसूल ने जो फरमाया है वो इख्तियार कर लो, तब जाके जो है अल्लाह का दीदार हासिल हुआ। तो अब ये हदीस से हमें मालूम हो रहा है ये तशरीह से कि मुर्दा जिस तरह मुर्दा है मर गया, अब आप उसके सामने जाके जो है उसकी तारीफ करो, उसको लानतान करो, उसको कोई असर नहीं होगा। मुर्दे के अंदर जो है कोई ख्वाहिश नहीं होती और जो किसी से हसद कीना नहीं, दिल बिल्कुल साफ ख़त्म कुछ भी नहीं, और मुर्दा जो है किसी से जो है हाजत रवा नहीं होता, किसी से जो है कोई ख्वाहिश नहीं रखता, उसी तरह जब अपने आप को बना लेंगे यानी मरने से पहले जब इस तरह हो जाएंगे तब जो है अल्लाह का दीदार होता है। तो मतलब अपनी अना को कितना ख़त्म करना है, कितना फना करना है, तभी तो रसूल मकबूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि अगर किसी को ज़मीन पर चलता फिरता मुर्दा देखना है تو اسے چاہیے کہ ابی قحافہ کی جو ہے بیٹے یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لے, چلتا پھرتا اگر مردہ دیکھ لو. اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو زمین پر چلتا پھرتا مردہ دیکھنا ہے تو اسے چاہیے کہ بھائی نظام کو دیکھ لے, چلتا پھرتا مردہ. تو یہ وہ حدیث کا جو ہے وہ مظہر بن چکے تھے, موتو خبر لنتو کا, موتو خبر لنتا موتو کا مظہر بن چکے تھے. حضرت لکھ رہے ہیں اس شعر کے بعد کہ یہ حدیث ترغیب و ترہیب کے لیے ہے. یاد رکھ, اب اسی حدیث کی دیکھیے جیسا تفصیل بیان کرتے جا رہے ہیں, یاد رکھ مومن کو دنیا میں ہمیشہ خوف و دہشت کے ساتھ رہنا چاہیے, دنیا سے گریزاں یعنی دور اور اس کے مکر و فریب سے لرزاں و ترسا رہنا چاہیے, دنیا کی قدر و منزلت آرائش و زیبائش پر مغرور و مسرور اور فریفتہ نہ ہونا چاہیے. دنیا جو سج سنور کی جو دلہن بن کے کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, خوش نہیں ہونا چاہیے. قیمتی اوقات جو سرمایہ زندگی ہے, جو زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ وقت ہے, انہیں ہرگز طلب دنیا میں صرف نہ کرنا چاہیے مگر بقدر ضرورت, جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا چاہیے, اور دنیا کے ساتھ ہرگز دل نہ لگانا چاہیے. کیونکہ دنیا کے بارے میں دیکھیے کیسا خطرناک شعر کہا گیا کہ دل بری پیرے زن اشو گرد دہر مبن کہ این عروسی اس کے در عقد بسے داماد اس, زمانے کو دھوکا دینے والی اس بوڑھی عورت دنیا سے دل مت لگا کہ یہ ایسی دلہن ہے جو بہت سے داماد کے عقد میں رہی ہے. دنیا بڑی خطرناک چیز ہے, اسی لیے جو ہے مہدی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ ترک دنیا کا جو لے آئے ہیں اور دنیا کی جو مذمت کی ہے. اسلام نے فرمایا ہے کہ بندہ جو ہے ہزار طالبان مولا کو رکھ سکتا ہے لیکن ایک طالب دنیا کو نہیں رکھ سکتا. طالب مولیا ظالب دنیا جو ہوتا ہے وہ مرے دن تک یہ کہتے ہی چلے جاتا ہے کہ دنیا کے جو مزے ہیں ہرگز کم نہ ہوں گے, چرچے یہی رہیں گی, افسوس ہم نہ ہوں گے, یہ بولتا ہوا جائے گا. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ میرے عزیز جب گاؤں دیہات میں رہنے والا مسافر کسی بڑے شہر میں پہنچتا ہے, شہر کی قسم قسم کی نعمتوں کا مزہ چکھتا ہے, پھر بھی اپنے اہل وطن کی فرقت و جدائی کی وجہ سے اس کے دل کو اس شہر میں آرام و قرار نصیب نہیں ہوتا. گاؤں کا کوئی شخص یہاں پہ جو ہے کام کرنے سے آتا ہے, بڑا شہر ہے, زبردست عمارتیں, خوبصورت بلڈنگیں, ہر چیز دنیا سج سنور کے ہے, وہ یہاں پہ رہتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس کا دل اپنے گاؤں میں رہتا ہے, کھیڑے میں, وہاں پہ جو ہے اس کا دل رہتا ہے. اس وجہ سے فرقت اور جدائی کی وجہ سے اس کے دل کو اس شہر میں آرام و قرار نصیب نہیں ہوتا اور وہ اس شہر کو اپنے لیے قید خانہ تصور کرتا ہے. تو بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دور ہو کر بے قدر و کمینی دنیا کے کوڑے دان میں پڑا ہوا ہے, تو پھر کیوں دنیا کو قید خانہ تصور نہیں کرتا اور بعز و انکساری اور گریہ وزاری اس سے رہائی کا راستہ نہیں ڈھونڈتا. حالانکہ مخبر صادق یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المومن یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قید خانہ محبوب کے مشاہدے یعنی اس کے دیدار اور مطلوب تک پہنچنے سے مانے ہوا ہے, رکاوٹ ہوا ہے. دنیا جو ہے مومن کے واسطے قید خانہ ہے, قید خانے میں آ گئے تو ہم جو ہے اللہ کے جو ہے دیدار سے محروم ہو گئے. اب کوئی جو طالب رہے گا وہ اس قید خانے میں جو ہے سکون و قرار سے کیوں رہے گا, کیونکہ جو ہے یہ قید خانہ اس کے واسطے جو رکاوٹ بن گیا. پہلے جو ہے بادشاہ کے جو ہے دربار میں تھے, دن رات جو ہے اس کو دیکھتے تھے, آٹھوں پیر ہمیشہ اس کے دیدار میں تھے, اب جو ہے دور پھینک دیے گئے اور دنیا جو ہے مومن کے واسطے جو ہے قید خانہ کہہ دیا گیا. اب اسی حدیث کے اوپر دیکھیں حضرت نے جو ہے کتنی جو ہے الگ الگ تفسیریں کی ہے. اس حدیث پاک میں حضرت لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں بہت سے فوائد اور بے شمار تنبیہات ہیں, وارننگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جو مومن صرف دنیاوی نعمتوں سے فرحت و سرور حاصل کرتا ہے یعنی خوشی حاصل کرتا ہے اور فراق مولا یعنی اللہ سے جدائی کے غم میں دل پریشان نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا ہے, جیسا کہ اس کا فرمان عالی شان ہے لا تفرحوا ان اللہ لا یحب الفریحین, یعنی جو ہے خوشی مت کرو, اللہ خوشی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. کیا دنیا راحت کی جگہ ہے؟ دنیا سے خوش مت ہو اور اس میں راحت و سکون کی سانس نہ لو, ورنہ حضرت دیکھیے اللہ کی زبان میں تفسیر کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ خود فرما رہا ہے کہ دنیا سے خوش مت ہو اور اس میں راحت و سکون کی سانس نہ لو ورنہ ہمارے قرب سے یعنی ہمارے قریب ہونے سے دور ہماری جدائی میں گرفتار اور خطر عظیم میں مبتلا ہو جاؤ گے, اگر ہم فضل کریں تو ہم تک پہنچ جاؤ گے ورنہ ہمیشہ کی جدائی میں پڑے رہو گے اور حاویہ دوزخ کے گڑھے میں پہنچ جاؤ گے, ہمیشہ ہماری جدائی کے غم اور وصال کے علم میں رہا کرو گے, अपने दिल को हमारे खुर्ब की तमन्ना के दर्द से जख्मी रखा करो, हमारे बिना शकर को एलवा और हर शरबत को जहर तसव्वुर करो, हमारे बगैर जो भी सांस लो उसे अपने लिए बोझ और निदामत महसूस करो। अल्लाह से जब दूर कर दिए गए तो अब अल्लाह खुद कह रहा है कि आप जो है जब हमारे से दूर हो गए तब इस दूरी को जो है आप दोज़ख तसव्वुर करना है, यही जो है दोज़ख है। और इसकी जो है यहाँ पे देखिए यहीं पे कदर करना है, क्योंकि यहाँ पे जिसने जो कदर कर ली अगर अल्लाह फजल कर दे तो हम तक जो है पहुँच जाओगे, वरना हमेशा की जुदाई। ये एक मौका है, इसके बाद जो है हमेशा की जुदाई, जो हकीकी जो दोज़ख है वो खुर्ब से जो है दूर फेंक दिया जाना, हमेशा की जुदाई में जो है पड़े रहोगे, दोज़ख के जो है गड़े में पहुँच जाओगे, हमारी जुदाई के गम और विसाल के अलम में यानी दर्द में रहा करोगे, और अपने दिल को हमारे खुर्ब की तमन्ना के दर्द से ज़ख्मी रखा करो, हमारे बिना शकर को एलवा, जो कड़वा होता है अल्लाह के अलावा शकर को जो है एलवा और शरबत को जहर तसव्वुर करो, हमारे बगैर जो भी सांस लो उसे अपने लिए बोझ और निदामत महसूस करो, शर्मिंदगी महसूस करो। अगर आबे खुर्दम अजकोज़ा ख्यालत रा दरो दीदम, अगर एकदम जनम बेतु पशेमानम बजान तो, अगर प्याले से एक घुट पानी पीता हूँ तो उसमें तेरा तसव्वुर पाता हूँ, और अगर तेरे बगैर एक सांस लेता हूँ तो तेरी कसम शर्मिंदा होता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देखिए ये बातें जो है आप इसको जो है वैसे तो एक मैदवी के सिर्फ जो है इसे पढ़ना नहीं है, वाकई में जो है हम वाकई में खुदा से जो है जुदा हो के आए, अब अल्लाह ताला हाजिर नाजिर है, हमारे दिल की कैफियतों से जो है वाकिफ है। हमारी जुदाई गम आपको ये एहसास होना चाहिए कि जो है मैं जो है मुसाफिर हूँ, बेवतन हूँ, परदेसी हूँ, और इस गम में मुब्तला रहने के वास्ते मैं इस्लाम ने जो फरमाया है ये खाली ऐसी बातें नहीं है, खाली ऐसे बयान सुन लेना नहीं है, खाली ऐसे जो है तकरीर सुन लेना, खाली जो है रिलीजियस गैदरिंग्स कर लेने का मकसद इसका हरगिज़ नहीं है। मकसद यही है कि जो अल्लाह का मकसद है वो हमारे से जो है पूरा हो जाए। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम जो है मुरादुल्लाह, अल्लाह की जो है मुराद है, अल्लाह की जो ख्वाहिश है वो मैं इस्लाम ने पूरी की है, और अपने तमाम मुसद्दिकीन को जो है अल्लाह की सरापा मुराद बनाए, अल्लाह की ख्वाहिश बनाए, तो अल्लाह ने अपनी ख्वाहिश करने के वास्ते जो है अल्लाह की ख्वाहिश पूरी करने के वास्ते जो है हमें अपने से जो है दूर किया है, यहाँ पर जो उसकी ख्वाहिश को पूरा करना है वही हकीकी मोमिन होता है, और जो है वो हमारे वास्ते जो है ये कैद खाना है तो कम से कम उसको तसव्वुर करना है कि ये कैद खाना है, मैं एक मुसाफिर हूँ, एक परदेसी हूँ, बेवतन हूँ, अपने असली वतन से जो है दूर कर दिया गया। आगे हजरत लिख रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी फरमा दी है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, अगर कैदी कैद खाने में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी थी हजरत, अगर कैदी कैद खाने में महल या इमारत की बुनियाद रखे और ऐश व इशरत इख्तियार करे तो दारोगा जेल यानी जेलर को गिरत गुस्सा आता है। कैद खाने में जो है डाला गया, जो है जेल में सजा दी गई, अब वो कैदी जो है अगर कैद खाने में जो है इमारत महल वगैरह ऐश इशरत कर रहा तो दारोगे को जो है गुस्सा आएगा। हम लिखते हैं कि अगर कैदी कैद खाने में महल या इमारत की बुनियाद रखे और ऐश व इशरत इख्तियार करे तो दारोगा जेल को गिरत गुस्सा आता है कि मैंने इसको कैद खाने में तंबी और इबरत हासिल करने के लिए रखा था, ना कि आराम के साथ रहने के वास्ते। इसी तरह अगर मोमिन, ब्रैकेट में लिखा है, इसी तरह अगर मोमिन दुनिया में इमारत की बुनियाद रखता है और आराम व इशरत इख्तियार करता है तो अल्लाह अज़्ज़ो जल को भी गुस्सा आता है। आगे हजरत लिखते हैं कि हजरत शेख अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं कि दुनिया इबरत की जगह है और उकबा हसरत की जगह है, ख्वाहिश की जगह है, इबरत और हसरत के दरमियान इशरत कैसी यानी खुशी कैसी, ऐश कैसा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी फरमाई, एक और एक उसकी तफसीर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और मोमिन इसमें महबूस व मुखैद है, कैद है, बाल बच्चे अहलो आयाल और खेश वाखारी जो तमाम खुराबतदार हैं कैद करने वाले की तरह, कैदियों की तरह ही, एक कैद खाने में हम भी कैदी और दूसरे भी कैदी हैं, जब कैद सजा दे दी गई तो आप भी जो है कैदी हैं और दूसरे भी जो है कैद खाने कैदियाँ हैं, तो फरमा रहे हैं कि बाल बच्चे अहलो आयाल वगैरह जो है वो कैदी के वास्ते जो साथियाँ रहती उसी तरह हैं, जिस तरह कैदी को सिर्फ ज़रूरी हद तक कैदियों से, कैद करने वालों से उनसियत होती है, मोहब्बत होती है, इसी तरह मोमिन को भी गैर खुदा से ज़रूरी हद तक ही मोहब्बत व उनसियत होनी चाहिए, किसी से बिलखज़ यानी इरादे के साथ वो इख्तियार मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महबूब हकीकी और मकसूद आज़म अल्लाह तबारक व तआला ही है। इसी माने को इस हदीस में बयान किया गया है कि कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी और को दोस्त बनाता तो यकीनन अबू बकर को अपना दोस्त बनाता, लेकिन अल्लाह ताला मेरा दोस्त। तो देखिए हम जो रह रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने खुराबतदारों के साथ, कैसी मोहब्बत, कैसा अल्लाह के वास्ते मोहब्बत, बात अलग है। वो जो रह रहे हैं खाली एक आम नॉर्मल ह्यूमन बींग के लाइफ में गुजार रहे हैं कि ये मेरा सब कुछ है, ये मेरे बीवी बच्चे, मेरा घर बार, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ बाप, ये सब कुछ है, नहीं, सब कुछ अल्लाह की ज़ात है। उनसे इसी तरह उनसी तरह नहीं बोल रहे हैं जिस तरह जो एक कैदी दूसरे कैदियों के साथ रहता है। ज़रूरी हद तक भाई बातचीत, हम कुछ वक्त तक यहाँ पे हैं, तुम भी कैदी है, मैं भी कैदी हूँ, हम ज़रूरी एक वक्त तक जो है सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद जो है फिर हम सब जो है यहाँ से रिहा हो जाएंगे। उस तरह की ज़रूरी हद तक जो है उनसे ताल्लुक़ रखना, ये कितनी बड़ी बात है अपने बीवी बच्चों से। और रसूल फरमाते हैं अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी और को दोस्त बनाता तो यकीनन अबू बकर को दोस्त बनाता, लेकिन अल्लाह ताला मेरा दोस्त है। इसीलिए बीवी आयशा रजी अल्लाह ताला ना गालिबन कोई और बीवी है, हाँ फरमाती हैं रसूल जो है हमारे दरमियान बैठी होती और जब अजान होती तो हमारे दरमियान से इस तरह तेज़ी से उठते जैसे वो हमें जानते तक नहीं, जैसे हमें वो जानते तक नहीं, अल्लाह का नाम आते जो है ऐसे उठ के चले आते फौरन अल्लाह के वास्ते अल्लाह फरमान के, जैसे कि जो है उनको जानते तक नहीं। आगे हजरत लिख रहे हैं जिससे उनसीयत रखो उसी की याद में जलते रखो जलते रहो, देखो आग है आग मसफ नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी कर दी एक और एक तंबी कि कैदी हमेशा नजात की उम्मीद और हलाकत के खौफ के दरमियान उलझा रहता है, क्योंकि कैदी का अंजाम या तो नजात व रस्ताकारी है या हलाकत व बर्बाद। कैदी जो है या तो जो है छुट जाएगा या तो जो है हलाक हो जाएगा, उसको जो है सजाए मौत दी जाएगी। मोमिन को भी चाहिए कि दुनिया की कैद में हमेशा नजात की उम्मीद या हलाकत के खौफ में ज़िंदगी बसर करे कि खात्मा का अंजाम क्या हो किसको पता है, खात्मा कैसा होगा किसको पता है, इस खौफ में जो है वो ज़िंदगी गुजारना है। कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि दुनिया के बाद या तो जन्नत है या जहन्नम। हज़रत लिख रहे हैं आगे कि इस खौफ से, ये जो हदीस है रसूल की, दुनिया के बाद या तो जन्नत है या तो जहन्नम है, क्योंकि जो है रसूल ने फरमा दिया इसकी तफसील भी कि जो है जो खबर से भी आप जो गुजरेंगे, खबर जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है या जो है दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है, तो वहाँ पे यही मरने के बाद ही हमारा से आखिरत जो है शुरू हो चुकी है। तो रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, यानी हम जैसे मरेंगे दुनिया के बाद या तो जन्नत है या जहन्नम है। तो हज़रत लिखते हैं कि इस खौफ से आरिफों के जिगर पारा पारा, उनकी आंखें सील रवा और उनके खद व खामत नहीं फन नातवा हो गए, यानी जो है इस खौफ से, ये जो बात है कि इस ज़िंदगी के बाद जो होने वाला है, इस खौफ से जो है आरिफीन जो है जो अल्लाह वाले हैं उनके जो है जिगर पारा पारा हो चुके हैं, उनकी आंखों से जो है आंसू रवा हैं और उनके खद व खामत, उनका जो जिस्म है वो नहीफ और कमज़ोर हो गए इस वजह से कि इसके बाद जो है क्या होगा। दुनिया के तमाम होशमंदा के दिल ज़ख्मी है, शेर का तर्जुमा है, इस एक मंजिल के सबब जो सबको दरपेश है, जो एक मंजिल है जो मौत, उसकी वजह से जो है जो तमाम अक्लमंद हैं उनके दिल जो है ज़ख्मी है, उस एक मंजिल के सबब जो सबको दरपेश है, आगे है, हर एक को जाने हैं। अगर हम इस दुनिया से ईमान के साथ गए तो सआदत व फलाह के साथ गए, कामयाब हुए, वरना देखिए कितनी खतरनाक बात है, वरना तू मुस्तमल ढेले और मुर्दार कुत्ते की तरह हाविया जहन्नुम की गहराई में फेंक दी जाएंगे। पहले जो है धारत के अवस्थे ढेले वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते थे, तो अब कह रहे हैं अगर हम इस दुनिया से ईमान के साथ गए तो सआदत व फलाह के साथ गए, कामयाब हो गए, वरना तू मुस्तमल ढेले और मुर्दार कुत्ते की तरह हाविया जहन्नुम की गहराई में फेंक दिए जाएंगे। गाह शर्म कुनत फरिश्ता ज पाकी माँ, गाह खंदा जन देव जना पाकी माँ, नहीं कभी फरिश्ता हमारी पाक दामनी से हया करता है, कभी शैतान हमारी नापाकी पर हंसता है। जब हम ईमान की सलामती के साथ खबर में पहुँच जाएंगे तो हमारी उस चुस्ती व चालाकी की तू तारीफ करेगा। जब तक हम कुछ नहीं कह सकते, देखिए वक्त आखिर तक जो है कुछ नहीं कह सकते, इससे पहले भी जो है एक हदीस के बाद ये बात कहता हूँ कि आगे हजरत ने दुआ लिखी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका हसनल खातिमा, यानी अल्लाह मैं तुझसे हसने खातिमा, अच्छे खातिमे की जो है सवाल करता हूँ, खात्मा बख़ैर होने की जो है दुआ करता हूँ। क्योंकि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमत से जो है एक शख्स ने जो है आके सवाल किया था कि क्या आप मर्द हैं, तो कहा वक्त आखिर पे कहूँ, इंतकाल के वक्त फिर वो शख्स आया और सवाल किया क्या आप मर्द हैं, तो कहा हाँ मर्द बन कर जा रहा, तो पूछा जब क्यों नहीं कहा, तो कहा जो शख्स दुनिया मखलूक नफ्स और शैतान के बीच रहकर ईमान की सलामती के साथ वक्त आखिर यहाँ से गुजर जाए वो शख्स मर्द है। अब चूंकि जा रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ मर्द हूँ, यानी जब तो मौत नहीं आई थी, बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन है, सात सलातीन औलिया इकराम में आते हैं, उस वक्त तक जो है अलर्ट, देखिए अल्लाह को देख चुके हैं, वासिल हो चुके हैं, लेकिन जो है अभी भी अलर्ट है, कुछ भी हो सकता, अभी जो है वो अलर्ट है। आगे जो है दो हदीस हज़रत ने लिखी है, अन्नौम खुल मौत, यानी मौत जो है नींद की बहन है वाली हदीस, ये हदीस है सुसम की जो भी इससे पहले आपके सामने बयान की गई है कि अपने आप को मुर्दों में शुमार करो के मुनासिबत रखती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आगाज़ हो रही है, और ये हदीस पाक के रसूल ने फरमाया कि अपने आप को असहाब खबूर में शुमार करो, तर्जुमानी करती है मूतु खबल अंत मूतु वाली हदीस से। इसकी तफसील हज़रत लिख रहे हैं, देखिए एक नॉर्मल जो है अखी वगैरह जो है मेरे भाई वगैरह को अरबी में कहते हैं, उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका बहन लफ्ज़ आता है फेमिनाइन होने से। तो रसूल ने फरमाया मौत जो है नींद की बहन है। यहाँ पे हमारे वास्ते जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक दूसरी टॉपिक शुरू हो रही है, वक्त है इसलिए जो है पढ़ रहा हूँ। तो हज़रत लिख रहे हैं कि जो अक लफ्ज़ है वो नज़ीर को कहते, मैच एग्जाम्पल उस जैसा उसको कहते। तो रसूल कह रहे हैं कि आपकी मौत, आपकी नींद जो है मौत की नज़ीर है, इन तुम्हें जैसी नींद है वैसी मौत है, बोल रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जैसी आपकी नींद है वैसी मौत है, बोल रहे हैं। तो हज़रत लिख रहे हैं, देखिए हज़रत खुद तफसील कह रहे हैं कि अक जो है नज़ीर को कहते हैं, एग्जाम्पल को कहते हैं, चुनाचे अरबी ज़ुबान में इख़वानुहा का तर्जुमा यानी हमारे भाई का तर्जुमा नज़ायरा से किया जाता है, यानी उसके एग्जाम्पल से किया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत नींद की नज़ीर है, नींद का एग्जाम्पल है, मौत को देखे नहीं तो नींद को देख लो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैसी बात है, नहीं अभी हम तो जो है मरने के बाद मौत को देखेंगे, जब मौत का मजा चखेंगे उसके बाद तो बयान नहीं कर सकते, अब उसको अब देखना है तो उसकी नज़ीर उसकी जैसी बिल्कुल, वो क्या है, रसूल ने फरमाया कि नींद है। हज़रत को इसकी तफसील बयान कर रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत नींद की नज़ीर है, एंड जिस तरह मौत की हालत का दारोमदार हयात की हालत पर है, इसी तरह हशर की हालत का दारोमदार मौत की हालत पर है। यानी मौत की हालत का दारोमदार जो आप जब मौत कैसा आएगी, जैसा आप जो है ज़िंदगी गुजारेंगे उसी तरह जो है आपकी मौत आएगी, उसी तरह हशर की हालत जिस तरह आपकी मौत हुई है उसी तरह होगी। इसके आगे तफसील लिखते हैं कि रसूल ने फरमाया जिस तरह तुम ज़िंदगी गुजारोगे उसी तरह मरोगे और उसी तरह उठाए जाओगे, नींद मौत की नज़ीर है। अब देखिए बात समझ में आए, यहाँ पे थोड़ा सा आप कन्फ्यूज ना हो, नींद को जो है मौत की नज़ीर कहा जाता है और मौत आएगी आपकी जो है हयात के ऊपर, जैसे आपने जो है ज़िंदगी गुजारा, फरमाया जिस तरह तुम जो है ज़िंदगी गुजारोगे उसी तरह मरोगे और उसी तरह उठाओ जाओगे। तो आप जिस तरह ज़िंदगी गुजारोगे उसी तरह मरोगे और जिस तरह मरोगे उसी तरह उठाए जाओगे। अब मरना किस तरह होगा, उस समय एक और एक हदीस में फरमा रहे हैं कि नींद जो है मौत की नज़ीर है, नींद मौत की तरह है। तो मेरी मौत कैसा होना है आपको अगर मालूम होना है तो आपकी नींद है, नींद मौत की नज़ीर है। आपकी मौत कैसी होने वाली है वो आपके ख्वाब आपकी नींद की हालत जो है आपको बता रही है कि तुम जो है अब फिल वक्त किस पोजीशन पे हो, वो आपको बता रही, गंदे गंदे ख्वाबों में गली गली चीज़ों में मुब्तला है, जो कुछ के आप देख रहे हैं वो शाम को ख्वाब में देख रहे हैं, वो उसी चीज़ों में मुब्तला है। उसी हालत में अगर इंतकाल करोगे तो उसी हालत में मरोगे, क्योंकि वो जो अल्लाह वाले होते हैं, कह देता हूँ आपको नींद मौत की नज़ीर है, जो अल्लाह वाले होते हैं जो दिन भर अल्लाह अल्लाह कहते हैं वो रात में ख्वाब में अल्लाह देखते हैं, उनका ख्वाब नींद मौत की नज़ीर, वो अल्लाह कहते मरते हैं अल्लाह कहते हैं उठते हैं। इसको समझ जाइए, अपने आप को जो है मुहासिबा करने का रसूल ने जो है हथियार दे दिया है ये कह के कि नींद मौत की नज़ीर है, अपने आप को मुहासिबा करने का, यानी मैं जिस तरह नींद में हूँ वो हकीकत में वैसी मेरी मौत होने वाली है, खुदा ना खास्ता अगर उस हालत में इंतकाल कर गए तो जो है दोज़क के वाले हो जाते हैं। बल्कि हमारे गुज़रानदीन ने उसकी जो है तफसील बयान की है, अगर ख्वाब में ज़ुब्तुल इरफान वगैरह किताब में जो है लिखा हुआ है, ख्वाब में जो तुम देख रहे हो कि तुम्हें शेर फाड़ रहा है मार रहा है कर रहा है और उसी में अगर इंतकाल कर जाओगे तो जो है तुम दोज़क के हवाले हो जाओगे। उसके अलग अलग तफसील होती है, लेकिन आपके ख्वाब में भी जो है दिन भर जो आप अल्लाह अल्लाह कह रहे हो, ख्वाब में भी अल्लाह अल्लाह देखना है, ख्वाब में भी जो है वही मेहनत मशक्कत करते वही इबादत करते हुए देखना है, क्योंकि ख्वाब हकीकत में जो है आपकी दिन भर आपने जो कुछ किया है वो दिल पे जो असर करता है वो आप ख्वाब में देखते हैं। दिन भर आप दुनिया में गुजारे तो असर जो करता है वो आप ख्वाब में देखते हैं, हकीकत में जो दिल पे जो असर करता है वो ख्वाब में देखते हैं। तो ख्वाब को रसूल फरमाने कि नींद मौत की नज़ीर है, जिस तरह आपकी नींद है उसी तरह जो है मौत है। तो ये बड़ा डरना है, मुहासबा खुद करना है कि जो है जो मेहनत मशक्कत यहाँ पे जो दिल लगा के अल्लाह की इबादत करेगा, जो जिसका जिक्र दिल पे असर करेगा, वो ख्वाब में भी अपने आप को उसी तरह हालत में देखेगा, उसकी नींद में भी अल्लाह का जो है जिक्र जारी रहेगा और उसी तरह जो है उसकी मौत होगी। हज़रत खुद इसकी जो है तफसील लिख रहे हैं, आगे पढ़ रहा हूँ कि नींद मौत की नज़ीर है, जिस तरह हालत बेदारी में रहोगे उसी तरह हालत नींद में रहोगे, और जिस तरह नींद में रहोगे उसी तरह नींद से बेदार होगे। अगर तुम हालत बेदारी में हक़ ताला के जिक्र व फिक्र, मोहब्बत व उल्फत और शौक़ व इबादत में मशगूल रहोगे तो उसी इस्तग़राक व मशगूलियत की हालत में तुम्हारी मौत बाकी होगी और उसी इस्तग़राक व मौत की हालत में तुम उठाए जाओ। सिंपल बात देख लीजिए, मतलब जो है ये हम जो बातें करते नहीं, ये हमारे एकदम जो जज्बा वगैरह आता है, ये तमाम पर्सन खुद कह रहे थे कि ये जो है फिल वक्त जो है असर नहीं करता हकीकत में दिल के अंदर जाके, ये ऊपर ऊपर जो है जलन होती है भी दिल के असर करना, मतलब आप जो है ख्वाब में भी देखना हो बात को, अंदर तक जाके असर जो करना है, आप जिक्र भी जो कर रहे हैं ख्वाब में जिक्र करते नहीं देख रहे हैं, मतलब जो है अपने आप को जो है आपने अभी उस मुकाम तक नहीं पहुँचा है, वो जिक्र जो है उस हालत तक नहीं गया है। दिल पर असर करना मतलब दिन में जो मेहनत मशक्कत की वो ख्वाब में भी देखना, फिर उठा बात जो है वही हालत में रहेगा, तो शख्स की मौत भी जो है उसी तरह आएगी जिस तरह जो है उसने ज़िंदगी गुजारी है। तो फिर से पढ़ाऊँ, आप गौर करें इस बात पे कि नींद मौत की नज़ीर है, जिस तरह हालत बेदारी में रहोगे उसी तरह हालत नींद में रहोगे। और जिस तरह बाज लोग खेल कूद के आते हैं जो ख्वाब में जो है उसी तरह हालत में देखते हैं अपने आप, दूसरी जो भी चीज़ करके आते हैं जो असर कर जाती है वो ख्वाब में देखते हैं। तो लिख रहे हैं कि जिस तरह हालत बेदारी में रहोगे उसी तरह हालत नींद में रहोगे, और जिस तरह नींद में रहोगे उसी तरह नींद से बेदार होगे। अगर तुम हालत बेदारी में हक़ ताला के जिक्र व फिक्र, मोहब्बत व उल्फत और शौक़ व इबादत में मशगूल रहोगे तो उसी इस्तग़राक व मशगूलियत की हालत में तुम्हारी मौत वाक़ होगी और उसी इस्तग़राक व मशगूलियत की हालत में तुम उठाए जाओगे। पपिंदारी की महरत अज़दिल आशिक रुविद हरगिज, चूँ मीरत मुब्तलाए मीरत चूँ खीजत मुब्तलाए खीजत, ये हरगिज मत समझो कि तेरी मोहब्बत आशिक के दिल से निकल जाएगी। आशिक जब मरेगा मुब्तला इश्क मरेगा, और जब उठेगा मुब्तला इश्क उठेगा। जब वो मरेगा अल्लाह से इश्क में मुब्तला होकर मरेगा, और जब उठाया जाएगा तो फिर भी जब उस वक्त भी जो है वो अल्लाह के इश्क में जो है मुब्तला होगा। अल्लाह की पनाह, अगर हालत बेदारी में अल्लाह जो जल से गाफिल यानी अल्लाह को भूले हुए, और गैर हक़ में यानी जो अल्लाह के अलावा है उसमें शागिल यानी मशगूल होगा, तो हालत मौत में भी गैर हक़ में शागिल अल्लाह ताला से गाफिल और उससे दूर व महजूर होकर मरेगा, और उसी हालत में उठाया भी जाएगा। शेख फरीदीन अतार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नज़म में लिखा है कि एक गधे वाला बिस्तर मर्ग पर था कि उसके पास मौत का फरिश्ता आया, जान कुनी की हालत में गधे को आवाज़ देता था और फरियाद करता था कि मेरा गुमशुदा यानी गुमा हुआ गधे को कौन पाया है। उसी हालत में इंतकाल हो गया, था उसी हालत में, दिन भर उसी हालत में था, उसी हालत में जो उसका इंतकाल हुआ। कहा जाता है, दो तीन एग्जांपल्स हैं, कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर के ज़माने में उनका एक मोतबर वज़ीर था, सुल्तान ने उसको हथियागढ़ माल वसूली के लिए भेजा था, एक मुकाम पे भेजा था माल वसूली के वास्ते। वो काली खुरा पहुंचा, एक पीच के मुकाम पे पहुंचा, तो उसके पास मौत का फरिश्ता आ गया और सकरात मौत उस पर तारी होने लगी। जब हालत निज़ाम वक्त आखिर पहुंचा तो चिल्लाने लगा, हत्यागढ़ का माल पहुंच गया। उसी हालत में उसकी रूह तन से जुदा हो गई। खुदा ही जानता है उस नाकिबत अंदेश का क्या अंजाम, क्योंकि जो जो उसमें मशगूल जो रहते आप इन्वॉल्व जो रहते उसी हालत में जो है मौत आती है। एक दर्जी था मौत के वक्त सुई याद करने लगा, ए जान अजीज़ जिस चीज़ के साथ मुकम्मल शुगल होगा मशगूल होंगे मौत के वक्त उसी को याद करेगा। ये बात है, देखिए सीधी सीधी बात है, जिसके साथ आप मशगूल रहेंगे उसी को आप जो है अपने ख्वाबों में देखेंगे और उसी के साथ जो है इंतकाल होगा। तो जो अल्लाह का आशिक होगा पूरी ज़िंदगी कदर करेगा, वो यहाँ पे मशगूल होगा तो वो नींद में भी मशगूल होगा, उठेगा भी तो भी मशगूल होगा, मरते वक्त भी मशगूल रहेगा, आशिक बन के मरेगा, उठेगा भी तो जो है क़यामत के दिन जब उठेगा वो जो है मुब्तला है इश्क होकर उठेगा। इसी तरह की बहुत सी हिकायतें किताबों में मैंने किताबों में पढ़ने को मिलती हैं और बुज़ुर्गों से सुनी गई हैं। जो समझदार है उसके लिए एक हर्फ ही काफ़ी है। एक आगे दूसरा उन्वान भी शुरू हो रहा है, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह जो है उसको अगली शब्द का इंशाल्लाह जो है कवर किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ के अगर हमें समझा रहे हैं अल्लाह ताला जो है उसका असर हमारे दिलों पे करे और ज़िंदगी की जो अल्लाह ताला ने कदर करने की तौफीक दे और फातिमा अलैहिस्सलाम के सदक़े में और हज़रत के सदक़े में जो है उसकी ज़ात का जो है तालीम साथ बनाए।